Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
कल और जगह जाऊंगा तो वहीं का हूंगा, परसों और जगह जाऊंगा तो वहीं का हूंगा, मैं जहां का हूं वहीं का हूं। मैं क्या कहूं कि मैं कहां का हूं, कैसे कहूं कि मैं कहां का हूं, इसका आशय क्या है आपका? तो वो कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा आशय है कि आप कहां पैदा हुए हैं, आपका जन्मस्थल कहां है। तो मैं कह देता हूं कि जहां तक मेरी बात पूछ रहे हो, तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ है तो मैं कैसे कहूं कि मैं कहां पैदा हूं। मेरा जन्म हुआ होता तो मैं बताता कि कहां पैदा हुआ है, बर्थ पैलेस में बताता, लेकिन मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं कैसे बताऊं कि मैं कहां का हूं, मैं कहां पैदा हुआ हूं। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि आप कितने साल के हो गए, अरे जो स्टार्ट होगा तब ना उसका कोई न कोई समय होगा। जब जन्म ही नहीं हुआ तो मैं कैसे बताऊं कि मैं कितने साल का हुआ हूं। तो कहते हैं कि ये सब बात गलत है, आप पैदा ही नहीं हुए तो ये यहां कहां से आ गए, ये बात प्राय करके पूछते रहते हैं। तो मैं कहता हूं कि आपका आशय मैं समझ गया, आप वास्तव में जिसको पूछना चाह रहे थे प्रश्न करना आपको नहीं आया। मुझे लगता है कि आपका आशय ये शरीर से है, आप ये चाहते हैं जानना कि ये शरीर कहां पैदा हुआ, और आप ये जानना चाहते हैं कि शरीर का कितना उम्र हुआ है। यदि आपका संबंध, आपका आशय शरीर से है तो इसका तो बर्थ पैलेस है, इसका तो उम्र है, मैं उसको बता दूंगा, लेकिन जहां तक मेरी बात है तो मेरी पैदाइश ही नहीं हुई है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न अन्यते अन्यमाने शरीरे। ये किसके लिए कहा है श्लोक, तुम्हारे शरीर के लिए कि तुम्हारे लिए है? ये बात किसके लिए कही गई है, तुम्हारे शरीर के लिए कही गई है कि तुम्हारे लिए कहा गया है, या किसी और के लिए कहा है? न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वान भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न अन्यते अन्यमाने शरीरे। ये बात तुम्हारे लिए कहा गया कि किसी और के लिए कहा गया है? बोलो, तुम्हारे लिए कहा गया है कि परमात्मा के लिए कहा गया है? न जायते म्रियते वा कदाचिन, तुम्हारे लिए कहा कि परमात्मा के लिए कहा है? ये बात निश्चय हो रहा है कि नहीं, आपने निश्चय किया कि नहीं? प्रेमपुरी आश्रम में आने के बाद ये बात आपको निश्चय हुआ कि नहीं? ये न जायते म्रियते वा कदाचिन भगवान शिव के लिए कहा गया है, कृष्ण के लिए कहा गया है, राम के लिए कहा गया है, विष्णु के लिए कहा गया है, गणेश के लिए, सूर्य के लिए, देवी के लिए, किसके लिए कहा गया है? ये आपके लिए कहा गया है, आपके लिए पक्का? यही बात है। जब ये बात है कि आपका जन्म नहीं हुआ है तो फिर आप बार बार क्यों पूछते हो कि आप कहां के पैदाइश है आपकी है? आपकी पैदाइश कहां की है, आपका बर्थ पैलेस कहां है पूछते हो फिर तुम प्रश्न? गीता पढ़ते हो तो पत्रकार के दिमाग चकरा जाता है, आपके दिमाग चकरा जाएगा तो पत्रकार तो क्या बेचारा सत्संग वेदांत करके एक सौ भी वो नहीं जानता है तो वो क्या है उस बात को समझेगा। तो हम ये कह दिया करते हैं कि जहां तक यदि इस शरीर के बारे में तुम जानना चाहते हो तो शरीर कहां पैदा हुआ है वो मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है अपने मां से, मैंने सुना है अपने बाप से, शरीर नेपाल में पैदा हुआ है, नेपाल के भी पोखरा में पैदा हुआ है, पोखरा के भी कुछ गांव में पैदा हुआ, वो सब कुछ रिकॉर्ड है, क्योंकि उसके आधार पर तो सिटीजन बना है, उसके आधार पर नागरिकता बनी हुई है, उसी के आधार पर पासपोर्ट बना हुआ है। आपकी नागरिकता, आपके पासपोर्ट, ये आपका है कि आपके शरीर का है? ये सारी रिकॉर्ड किसकी है? आपकी शरीर का है। तो ये सब रिकॉर्ड है तुम्हारे, हमारे पास इस शरीर के बारे में, तो इसकी इन्फॉर्मेशन तो हम दे सकते हैं, ये कहां पैदा हुआ, कितनी साल का हुआ है। तो जहां तक मेरी बात है, मैं नहीं कह सकता हूं, मैं तो पैदा नहीं हुआ हूं, इसीलिए ये शरीर मरेगा, कभी न कभी मरेगा, नष्ट होगा, और मेरी मृत्यु नहीं होगी। मैं नित्य हूं, शाश्वत हूं, व्यापक हूं। ये शरीर, इसीलिए साधुओं की भाषा कई बार आप लोग सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। साधु लोग ये नहीं कहते हैं कि मैं ऋषिकेश गया था, मैं यूके गया था, हनन गया था, साधु लोग ये नहीं कहेंगे, ये शरीर गया था, क्योंकि आना जाना इस शरीर का काम है मेरा, तो मैं तो व्यापक हूं भाई। एक तरफ मेरे व्यापकता को मैं अनुस्वीकार करता हूं, शास्त्र मेरी व्यापकता की बात कर रही है, और दूसरी तरफ मैं ये कहूं कि मैं गया, मैं आया, एक तरफ मेरे अजन्मनता की बात कर रही है शास्त्र, दूसरी तरफ मैं कहूं कि मैं पैदा हुआ हूं, ये गलत। इसलिए साधु लोग कहते हैं कि शरीर का इतना उम्र हुआ, शरीर ने ये किया, शरीर ने वो किया, जिसका काम है उसी का काम है। तो साधुओं की भाषा हमको शुरू शुरू में बड़ा आश्चर्य लगा, जब हरिद्वार ऋषिकेश में हम आए तो वो जो साधु संत लोग वृद्ध लोग थे वो आपस में बात करे, ये शरीर गया था, हमको समझ में नहीं आवे, ये शरीर गया था, इस वाणी से ये बात कही गई थी, इन आंखों से ये देखा गया था। हम ये गलती करते हैं, हम कहते हैं कि मैंने देखा था, हम ये कह देते हैं कि मैं बोल रहा हूं, वो साधु कहते हैं कि बोलने की क्षमता मुझ में नहीं है, देखने की क्षमता मुझ में नहीं है। अपाणिपादो जवनो ग्रहीतास, श्रुति बार बार कह रही है, तुम्हारे हाथ नहीं है तो तुम कैसे करोगे, तब तुम कहोगे कि मैंने किया, इन हाथों से किया, ये कहते हो तो ठीक है, जब तुम्हारी आंख ही नहीं है तो तुम देखोगे कैसे, तब ये तुम कहोगे इन आंखों से देखा, तो ये तो ठीक है, तुम्हारे कान ही नहीं है तो तुम सुनोगे कैसे, तो तुम ये कह सकते हो कि इन कानों से हमने सुना, इन कानों से सुना, इन पांवों से हम गए, इस साल कैलाश मानसरोवर की यात्रा की थी, तो उसमें सबसे बुजुर्ग हमारे मुकुंद भाई सेठ, 80 वर्ष के वृद्ध, 72 यात्रियों का वो काफिला था जिसमें कैलाश की परिक्रमा में केवल 21 यात्री ने साथ दिया, और लोग तो वहां अल्टीट्यूड के कारण और कैलाश की परिक्रमा पैदल करनी है उसके कारण हिम्मत हार गए, और हमारे मुकुंद भाई से 80 वर्ष के उम्र के वृद्ध, हमने कहा सभी जा रहे हैं तुम भी वापस चले जाओ, बोले नहीं महाराज, हम यहां आए हैं तो कैलाश की परिक्रमा करेंगे, वो चले और पूरी कैलाश की परिक्रमा उन्होंने की, जिस यात्रा के डीवीडी हम लेके आए हैं और आज संडे के कारण स्वाध्याय नहीं है, उसको किसी को देखने की इच्छा हो तो इस प्रवचन के बाद नीचे प्रेमपुरी आश्रम के प्रवृत्तियों में सीडी डीवीडी का भी कार्यक्रम, यहां एक रूम स्पेशल उसके लिए रखा है, उसका उपयोग करने वाले हैं, आप देख सकते हैं आज ही। तो हम ये कहने जा रहे हैं कि ये उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद माने ऋषि ने इन मंत्रों को देखा, ये बड़ी विचित्र बात है। हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है पूछते हैं। अब वेद और उपनिषद का तो कोई लेखक है ही नहीं। जैसे तुम्हारे और परमात्मा का पैदा करने वाला कोई माई बाप नहीं पैदा हुआ, तुम्हारे तुमको पैदा करने वाला कोई माई बाप नहीं हुए, तुम्हारे शरीर को पैदा करने वाले हुए हैं, तुम्हें नहीं पैदा किया है, क्यों मतलब तुम्हारा जन्म नहीं होगा तो फिर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैदा करेंगे? तुम्हारे शरीर को पैदा करने वाले हैं तुम्हारे माँ बाप माता पिता। जैसे तुम पैदा नहीं हुए हो किसी अन्य के द्वारा, इसी तरह वेद किसी की तरह किसी के द्वारा पैदा नहीं हुआ है। वेद अपौरुषीय है, शाश्वत है, सत्य है। उन सत्य और शाश्वत को देखा ऋषियों ने। जिन ऋषियों ने इन मंत्रों को, इन ऋचाओं को देखा, तो उन्हीं के नाम से इन उपनिषदों को प्रसिद्ध कर दिया गया है। जैसे मुंडक उपनिषद, वैसे ही श्वेताश्वतर उपनिषद। इस श्वेताश्वतर ऋषि ने इन मंत्रों को देखा। 113 मंत्र हैं इस उपनिषद में। कृष्ण यजुर्वेदीय श्वेताश्वतर उपनिषद के 113 मंत्र हैं। इन 113 मंत्र को, जो वेद के 113 ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं को श्वेताश्वत ऋषि ने समाधि में अनुभव किया। इसकी रचना नहीं की है, अनुभव किया। जैसे आपके पेट में कहीं दर्द होता है, उस दर्द को आपने पैदा नहीं किया, उस दर्द को आपने पैदा किया है? क्या किया? अनुभव किया। किसको? उस दर्द को। आपने दर्द को पैदा नहीं किया, लेकिन जब आपको जब पेन हुआ, उस दर्द को आपने अनुभव किया, तो उस दर्द का आप सर्जक नहीं है, आप निर्माता नहीं है। उस दर्द के, उस पीड़ा को उत्पन्न नहीं किया आपने, अनुभव किया। इसी तरह कोई किसी प्रसंग में आपको जो आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद को आपने पैदा नहीं किया, उस आनंद का आपने अनुभव किया। अब उस आनंद का अनुभव करता है, उस आनंद का सृष्टा नहीं है, उस दुख के अनुभव करता है आप, उस दुख के सृष्टा नहीं है आप। इसी तरह ऋषि इन ऋचाओं के, इन मंत्रों के सृष्टा नहीं है, इन ऋचा इन मंत्रों के अनुभव करता है। तो ऋषय मंत्र दृष्टा रहा, उन मंत्रों को उन्होंने समाधि में अनुभव किया। उन अनुभव किए हुए मंत्रों को उन्होंने अपने शिष्य परंपरा को सुनाया। आप सुनाते हो कि नहीं? आपके पेट में जब दर्द होता है, आपके कमर में जब दर्द होता है, आपके घुटनों में जब दर्द होता है, तो क्या आप उन पेट के दर्द, घुटने के दर्द और कमर के दर्द के सृष्टा हैं? नहीं है। आप अनुभव करता है, उस अनुभव को फिर आप डॉक्टर को सुनाते हो कि नहीं है? डॉक्टर के यहां जाकर आप सुनाते हो कि नहीं? इसी तरह श्वेताश्वत ऋषि ने इन मंत्रों को देखा, 113 मंत्रों को देखा, देखकर अनुभव करके उन मंत्रों को अन्य शिष्यों को सुनाया। इसीलिए इसको कहते हैं श्रुति, इसीलिए इसका नाम हुआ श्रुति। उन्होंने सुनाया, और जिन श्रोताओं, जिन शिष्यों ने इनको सुना और इन सुने हुए श्रुतियों के आधार पर साधना की, और उनको फिर उसी प्रकार का अनुभव हुआ, फिर उन्होंने फिर और शिष्यों को सुनाया। इसी तरह ये मंत्र श्रुति के रूप में आज तक हमारे पास विद्यमान है। हमको भी हमारे गुरु ने सुनाया, और उस सुने हुए मंत्रों के आधार पर हमने साधना की। साधना करने के बाद हमने इसको अनुभव किया, अनुभव के बाद हम आपको सुना रहे हैं। और आप यदि अनुभव कर पाए तो गुरु बन जाएंगे, अनुभव कर नहीं पाए तो चेले के चेले गुण के गुण ही रह जाएंगे। एक कहावत है हमारे साथ शास्त्रों में, हमारे समाज में, चेला चीनी हो गया और गुरु गुण के गुण रह गए, है ना। चीनी तो गुण से ही पैदा होता है, गुण से ही चीनी का रॉ मटेरियल तो गुण है कि नहीं। और चीनी तो वो तो प्योरीफाई हो गया, जाके चीनी हो गया, उसका मूल्य बढ़ गया क्योंकि वो उस प्रोसेस में गया। और गुण उस प्रोसेस में नहीं गया तो क्या हुआ, गुण का गुण रह गया। चीनी उस प्रोसेस में गया, वो प्योरीफाई के प्रोसेस में गया, रिफाइन के प्रोसेस में गया, प्रशोधन के प्रोसेस में गया, और जहां वो साधना उस प्रक्रिया में गया तो उसके बाद वो चीनी हो गया। तो आपका जीवन कहीं गुण का गुण न रह जाए तो आप श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, केवल सुनकर रह गए तो गुण के गुण रह गए, और मनन और निधिध्यासन की प्रक्रिया में यदि आपका जीवन गया तो वह प्रशोधन की प्रक्रिया में गया, वो प्यूरिफाई की प्रक्रिया में गया, रिफाइन की प्रक्रिया में गया, तब फिर आप गुण से चीनी हो जाएंगे। तो यही तो है, शिव जीव हो गया और जीव प्रशोधन की प्रक्रिया में गया तो शिव शिव हो गया, और प्रशोधन की प्रक्रिया में नहीं गया तो जीव जीव का जीव ही रह गया। ये जीव और शिव ये दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। जो जीव है वही शिव है, जो शिव है वही जीव है। जीव प्रशोधन की प्रक्रिया में जब निकलता है तब वो फिर वो शिव, और अप्रशोधन के प्राकृत ही रह जाता है तो फिर वो जीव का जीव ही रह जाता है। तो वेदांत की जो प्रक्रिया है ये प्रशोधन की प्रक्रिया है, आत्मा वा श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो इस तरह ये श्रुति परंपरा चली, इसको हम श्रुति कहते हैं, श्वेताश्वतर श्रुति। भगवान सर्वज्ञ आदि गुरु शंकराचार्य जी चतुर्थ अध्याय के आरंभ में दो लाइन में इसकी महत्ता के बारे में, इसकी उपयोगिता के, चतुर्थ अध्याय आरंभ करने की औचित्य के बारे में संकेत कर रहे हैं। गहनत्वाद् अस्य अर्थस्य भूयो भूयो वक्तव्य इति चतुर्थ अध्याय आरभ्यते। ये पंक्ति शंकराचार्य जी की है, मूल मंत्रों की व्याख्या से पहले। गहनत्वाद् अस्य अर्थस्य भूयो भूयो वक्तव्य इति चतुर्थ अध्याय आरभ्यते। देखो आप लोग चना भी खाते ही हैं और आप लोग श्रीखंड भी खाते हैं, खम्मन भी खाते हैं, चना भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं। आप ये बता सकते हो श्रीखंड को कितनी बार चबाना पड़ता है, मुख में लेने के बाद कितनी बार चबाना पड़ता है? चबाना नहीं पड़ता है, आसानी से नीचे उतर जाता है। और रोटी को कई बार चबानी पड़ती है, चने को और उससे भी ज्यादा बार चबाने पड़ता है। तो ये क्या चीज है भाई, श्रीखंड सीधे बिना चबाए उतर जाता है, रोटी को कुछ ज्यादा चबानी पड़ती है, चने को उससे भी ज्यादा चबाना पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो शंकराचार्य जी इन पंक्तियों से कहते हैं कि वेदांत दर्शन हमारी पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कार, पुरानी मान्यता के ठीक विपरीत होने के कारण हमारे दिमाग में ये श्रीखंड की तरह सहज रूप में नहीं उतरता, ये चने की तरह बन जाता है। क्योंकि हमारी मान्यता क्या है, हम पैदा हुए। उपनिषद की मान्यता क्या है कि तुम पैदा नहीं हो, तुम्हारा शरीर पैदा हुआ। अब ये हजारों सदियों से हम यही अभ्यास करते आए हैं। अभी भी जन्म जब से पैदा हुए तब से यही कहते हैं कि मेरा इतना वर्ष हो गया है, बर्थडे मना रहे हैं, अभी भी केक काट रहे हैं। हमने तो शिव उपासना जन्मदिन के दिन मृत्युंजय महादेव के अष्ट चिरंजीवी की पूजा सहित लघु रुद्री और रुद्राभिषेक करने की परंपरा थी हमारी, और आजकल वो परंपरा को भूल गए और जाके केक काटने शुरू कर दिया। बर्थडे के दिन आप केक काटेंगे कि रुद्राभिषेक करेंगे? है? करना चाहिए था वो हमेशा बर्थडे के अंतर्गत, क्योंकि अविनाशी अविकारी अविकारी मृत्युंजय महादेव की आराधना अष्ट चिरंजीवी की पूजा करोगे तब न तो तुम निरोग और निरोध होगे। और केक काटकर भी कहीं होता है, ये सभ्यता भूल गए हम। तो गहनत्वाद अस्य अर्थस्य, इन उपनिषदों का जो अर्थ है, जो हमारा लक्ष्य है, वो अति गहन होने के कारण वो सहज में हमारे बुद्धि में हमारे जीवन में वह नहीं उतरता। इसके लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है। इस अभ्यास के क्रम में ये चतुर्थ अध्याय आरंभ किया गया है। मंत्र है, या एको वर्णो बहुधा शक्ति योगाद् वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति वीचैति चान्ति विश्वमादौ सदेवः सनु बुद्ध्या सुवया संयुनक्तु। ये प्रार्थना से संबंधित ये मंत्र। यह एको अवर्ण, जो यह नाम नहीं लिया गया है, जो एक है, एक कौन है, इस शरीर में एक कौन है और अनेक क्या है, आपको इसका विभाजन करना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका रिसर्च करना पड़ेगा। एक क्या है और अनेक क्या है? आप बता सकते हैं कि इस शरीर में इंद्रियां कितनी हैं? इंद्रियां 10 हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। आप बता सकते हैं प्राण कितनी है? आप बता सकते हैं अंतःकरण कितनी है? अंतःकरण 4 हैं, प्राण 5 हैं, प्राण मुख्य प्राण और उपप्राण 10 हैं। मुख्य प्राण तो 5 हैं, उपप्राण 5, 10, इंद्रियां 10, अंतःकरण 4। आप बता सकते हैं आपके शरीर में हड्डियां कितनी हैं? हैं? आप बता सकते हैं कि आपके शरीर में नसाएं कितनी हैं? लेकिन आप बता सकते हैं कि इस शरीर के अंदर मैं कितनी हूं, आप कितनी हैं? ये किसी और की बात नहीं कही जा रही है, अपने बारे में कह रहा हूं। या एक, जो एक है। कोई भी इस शरीर में दो के रूप में अपने आप को कोई फील करता है कि मैं शरीर में दो हूं, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर इधर अनेक, मैं तो एक ही हूं, तो या एक हो। जो एक है, अवर्ण है, उसका कोई रूप रंग नहीं है। अवर्ण माने निर्विशेष, वर्ण माने सविशेष। हम जो कुछ भी किसी के बारे में कहते हैं उसकी विशेषता के बारे में कहते हैं, उसके बारे में नहीं कहते। व्यक्ति और व्यक्ति की विशेषता। आप आत्मानंद के बारे में कहना पड़ेगा, कहना चाहोगे तो आप यही कहोगे कि आत्मानंद जी नेपाल से हैं। नेपाल मेरा आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन आप विशेषण जोड़कर मेरे बारे में वर्ण, नेपाल से हैं, ये नेपाल नहीं जोड़ोगे तो मेरे बारे में क्या कहोगे आप? आत्मानंद जी सन्यासी हैं, सन्यासी नहीं जोड़ोगे तो तुम मेरे बारे में क्या कहोगे? गिरीश भाई गृहस्थी हैं, कहना तो चाहिए था वानप्रस्थी हैं उम्र के हिसाब से तो वानप्रस्थी हैं कहना चाहिए था। हम कह सकते हैं कि गिरीश भाई प्रेमप्रिय आश्रम के ट्रस्टी हैं। हम कह सकते हैं कि गिरीश भाई प्रेमप्रिय आश्रम के जो प्रवचनों की एक्टिविटी है उसमें संतों के कोऑर्डिनेटर हैं। गिरीश भाई अपनी जगह पर, उनके बारे में कहना होगा तो कोई न कोई विशेषण जोड़ना पड़ेगा, उसी को वर्ण कहा जाता है। यह एक अवर्ण, क्योंकि उसकी कोई विशेषता नहीं है, इसीलिए उसके बारे में यदि कहना चाहें तो अवर्ण। सॉरी समय 35 हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आज रविवार, आज कई अच्छे कार्यक्रम भी होने जा रहे हैं। महाराज जी, जो नेपाल से आया, बड़ी क्रांति हुई है। मैं चाहूंगा कि आप जरा 5 मिनट बैठे जो भी जा रहे हैं, क्योंकि विशेष सूचना देनी है। जैसे कल मैं सूचना पर ही आ जाऊं, क्योंकि किसी को जल्दी हो जा सके। कल ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग थी, उसमें जैसे चिमन भाई सोलंकी हमेशा बता रहे थे, और हमारे झुंझुनवाला जी ने कल प्रस्ताव रखा, और तिजोरी वाला जी से भी मैंने समर्थन लिया, और पूज्य महाराज जी से भी ये बात बताई। कल से कुछ 3 मिनट पहले ही यह शांति पाठ किया जाएगा, यानी 7/27 को। राजू भाई को हम सूचित करते हैं और सूचना भी देते हैं, क्योंकि वो भी सत्संगी की तरह ही बैठते हैं, और उससे माइक की व्यवस्था करनी है। तो 3 मिनट पहले ही शांति पाठ करेंगे, 7:30 बजे पूज्य महाराज जी 3 मिनट पहले ही पधारेंगे, और 7:30 से जो भी मंगलाचरण वगैरह होगा वो महाराज जी करवा देंगे। कोशिश करके 7:35 को बराबर प्रवचन धारा, क्योंकि जो मेहनत करके, जो परिश्रम करके, और जो बातें कर लाने के लिए यहाँ प्रस्तुत जो भी आते हैं महात्मा, संत महात्मा, और जो प्रेमपुरी के भाव महाराज जी ने प्रदर्शित किए, हम उस सबको वंदन करते हैं, और उसी को लेकर हम ज्यादा से ज्यादा हम महाराज जी के प्रवचन में सुने, उसके लिए यह थोड़ा सुझाव ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से रखा गया, और उसे यहाँ तिजोरीवाला जी ने भी अनुमोदन दिया है। और आप सबसे भी विनती है कि बराबर 7:30 बजे आप यहाँ पधार जाए, और 7:35 को ही प्रवचन धारा शुरू होगी। तो जो अपनी थोड़ी आदत है तो उसको सुधारे और प्रवचन का पूरा आनंद ले। प्रेमपुरी दिव्य पथ युवा संस्कार शक्ति के अंतर्गत श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल के सहयोग से ब्रह्मलीन हरिबोल के आराधक पूज्य श्री बैरागी बाबा की द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रातः 9 यानी अभी थोड़े ही समय में हरि कीर्तन जो 4:30 तक होगा, 4:30 से 4:45 घंटे तक एक छोटी प्रवचन की रखा है, जो एक खास महात्मा पधारे हैं, और उसके बाद विनोद जी अग्रवाल के भजन का आनंद हम लूटेंगे। प्रातः मनोज जी और उनके साथ एक, जैसे मैंने बताया, पुमा जी करके हैं, जो बैरागी बाबा की प्रतिकृति रूप है, और बहुत ही अच्छा भजन का आनंद वो लुटाएंगे आज अपने सामने, और हमें लूटना है। तो इसमें बराबर समय सर आप पधारे, 9 बजे यहाँ से छूट के यहाँ, क्योंकि अभी आज रविवार है, आत्मशतक गीता अध्याय और 12वां का पठन भी होगा, तो उसके बाद आप जरूर से नीचे पधारे। जैसे महाराज जी ने बताया कि कुछ कैसेट भी सेकंड फ्लोर में जो एक सीडी रूम है वहां रखा है, उसमें भी अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, और फिर वहां से जो ग्राउंड फ्लोर में बहुत ही अच्छी तरह सजाया गया है, और पूज्य बैरागी बाबा जी की जो फोटो है उसको भी, प्रतिमा को भी बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है, तो उसका भी आशीर्वाद और लाभ लेके आप जाए ऐसी विनंती है। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित धनकुंवरबेन मथुरा दास मोदी श्रुति व्याख्यानमाला के अंतर्गत आज सायं श्रीमती हीना अजय मेहता के भजन व पूज्य श्री हरिभाई कोठारी द्वारा भौतिक जीवन विषय पर प्रवचन होगा। इसी व्याख्यानमाला के अंतर्गत कल सोमवार सायं पूज्य जी श्री हरिभाई कोठारी के प्रवचन हो गए और उनका विषय होगा नैतिक जीवन। आज है भौतिक जीवन, कल है नैतिक जीवन और मंगलवार को अंतिम दिन सामाजिक जीवन पूज्य हरिभाई कोठारी द्वारा होगा। तो इसका सबका पूरा लाभ ले। आज के श्रेय समिति के यजमान है श्रीमती शारदाबेन जयंतीलाल मूल जी की ओर से, श्री डॉक्टर एच टी मेहता की ओर से, श्री डॉक्टर त्रिभुवनदास एच मेहता की स्मृति में, रामेश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से श्री ईश्वरलाल मगनलाल दलाल के जन्मदिन के निमित्त पर, श्री रमनलाल वल्लभ भाई शाह की ओर से आपके जन्मदिन के निमित्त पर। आप या आपके परिवार के सदस्य यहां उपस्थित हो तो महाराज जी से आशीर्वाद व प्रसाद ग्रहण करें। महाराज जी एक क्षमा चाहूंगा कि यह हमारे तरफ से गलती है कि संतों को और जो भी उनके खास हरिभक्त हैं उनको ये सूचना देनी चाहिए कि वेबसाइट यहां वेबसाइट शुरू कर दी गई है, तो जिससे आप जब जहां भी हो तो इसका पूरा लाभ आप ले सके। तो यह हम लोग सूचित कर देंगे और एक एक दो दिन में ही जितने भी संत वगैरह हैं उनको यह खबर दी जाएगी कि हमने प्रेमपुरी की वेबसाइट आप कहीं भी दुनिया के कोई भी कोने में, यानी जो प्रवचन आज हो रहा है वो उसी समय लगभग थोड़े फर्क में आप कहीं भी दुनिया के कोई भी कोने में सुन सकते हैं, ऐसी इसमें व्यवस्था रहती है। और कई ऐसी चीजें रहती है कि जिससे वेबसाइट से पूरी एक श्रृंखला, एक जैसे मोती अलग अलग होते हैं उसको जुड़ के एक पूरी माला बनती है, उसी तरह से यह पूरा वेबसाइट का काम होता है। पूज्य महाराज जी का तो जो मोहसिन मोहनिस और गावड़े जी पर बड़ा प्रेम है और उन्होंने MP3 सबसे पहले पूज्य महाराज जी की प्रकाशित हुई थी और अभी जो महाराज जी ने उपनिषद का प्रवचन धारा चलेगी उसमें और भी हम आनंद लेंगे। पूज्य महाराज जी को फिर से वंदन करते हुए अब शांति पाठ और